संति मे गुरवो राजन बहवो बुद्धि उपाशिताः यतो बुद्धि मुपादाय मुक्तो अट्टामिह तां शृणु पृथ्वी वायुः आकाशमापो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधुः पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरडोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत एते मे गुरवो राजन। अवधुदत्तात्रय प्रकृति के पदार्थों से शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हमारा जीवन हमेशा एक विद्यार्थी का जीवन है और ये सीखने की जो परंपरा है ये निरंतर चलती रहती है। ज्ञान को पाने का कोई समय नहीं होता है, न कोई उम्र होती है। आदमी सोचता है कि अब क्या जाने, ये क्या समय सीखने का है। लेकिन जब तक ये जीवन है तब तक हमारा जीवन सीखने का है। निरंतर समझ को ग्रहण करें और हमारे जीवन को आगे बढ़ाते जाए। जहां पर भी सीखने की चीज मालूम पड़े उसको ले लेना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान पवित्र है। भगवान ने कहा ज्ञान जैसी पवित्र चीज दुनिया में और कोई नहीं है, और वो जहां भी ज्ञान मिले उसको ले लेना चाहिए। प्रकृति के जड़ पदार्थों से भी जहां से शिक्षा मनुष्य को लेने की कोई संभावना नहीं है, उन चीजों से भी शिक्षा ले रहे हैं। हम पृथ्वी को जड़ समझते हैं लेकिन उस जड़ से भी शिक्षा ले रहे हैं। हम चेतन से भी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। कोई हमें शिक्षा देता है फिर भी हम वहां से शिक्षा नहीं ले पाते। लेकिन अवधूत दत्तात्रेय जड़ से जहां से शिक्षा लेने की कोई संभावना नहीं, ये ग्रहणशीलता है। आदमी के अंदर का जो जिज्ञासु स्वभाव है उसकी निरंतरता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो जिज्ञासु होता है, वो जानना चाहता है, वो हर चीज को जानना चाहता है। दुनिया में जहां पर भी जीवन है जीवन के साथ जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा ही तो आगे बढ़ाती है। पशु का बच्चा भी जानना चाहता है, वो भी आसपास की चीजों से वो सूंघता है, वो देखता है और वो सीखता जाता है। मनुष्य के बालक में भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जानने की उत्सुकता, और वो जानने की उत्सुकता ही हमें ज्ञान में ले जाती है। ये जानने की उत्सुकता कभी मरने नहीं देना चाहिए। हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है वो कभी मरे नहीं, और जो जिज्ञासा हमारे अंदर है तो हम युवा हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी उम्र में हैं लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर जानने की उत्सुकता है, तो आपके अंदर एक ताजगी है, आपके अंदर एक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा है, और वो निरंतर हमें ज्ञान में ले जाते हैं, निरंतर समझदारी में ले जाती है। इसीलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है जिज्ञासा, और वो जिज्ञासा जितनी निरंतर होगी हमेशा होगी उतना ज्यादा हम जानने का प्रयत्न करें। आदमी सत्संग में आता ही इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, उसको जानना है, उसको कुछ नया करना है, कुछ करना है। और ये कुछ करने की जो भावना, यही तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अवधूत दत्तात्रेय जड़ चेतन संपूर्ण पदार्थों से जीवन में शिक्षा ले रहे, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा ली। आपने सुना पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तत्वों से शिक्षा ली, अब वो चंद्रमा से शिक्षा ले रहे हैं। चंद्रमा रवि ही कपोतो अजगर है। उन्होंने देखा, चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देखकर सोचने लगे। चंद्रमा में कलाएं हैं और वो कलाएं बढ़ती हैं। एक कला है, प्रतिपदा के दिन एक कला है, द्वितीया के दिन दो कलाएं, तृतीया के दिन तीन कलाएं, और जब वो पूनम के दिन चंद्रमा होता है तो पूर्ण कल होता है, वो पूर्णता को प्राप्त करता है। और जैसे ही प्रतिपदा आती है पूर्णिमा के बाद, फिर एक कला कम हो जाती है, द्वितीया के दिन दूसरी कला कम हो जाती है, और अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल शून्य में खो जाता है, वो अंधकार में चला जाता है। एक बहुत बड़ा संदेश है हमें, हम चाहते हैं जीवन में पूर्णता चाहते हैं, यहां प्रत्येक व्यक्ति पूर्णता चाहता है। उस पूर्णता को पाने के मार्ग अलग हैं, लेकिन सबके उद्देश्य एक हैं। एक संसार का आदमी भी पूर्णता चाहता है, लेकिन वो संसार के पदार्थों के द्वारा, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी पूर्णता चाहता है, लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग से। एक भोगी भी पूर्णता चाहता है भोग से, और एक योगी भी पूर्णता चाहता है योग से। दोनों का उद्देश्य एक है, मार्ग अलग है। आदमी चाहता है वो मैं पूर्ण चंद्रमा बनूं, पूर्णिमा का चंद्रमा बनूं, और उसको पाने के लिए धीरे धीरे स्टेप स्टेप है, एक है, दो है, तीन है। उन्होंने शिक्षा ली, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रम से पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, उसको क्रम से पाने की जरूरत नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। बहुत सारी चीजें जल्दीबाजी में खो जाती हैं, बहुत सारी चीजें जल्दीबाजी में बिगड़ जाती हैं। एक क्रम है, विकास का एक क्रम है, और विकास के लिए भी समय चाहिए। विकास कर्म सापेक्ष है, विकास समय सापेक्ष है। चंद्रमा को पूर्ण बनने के लिए समय चाहिए, वो 15 दिन का समय है। यदि चंद्रमा चाहे कि मैं एक साथ ही पूर्ण हो जाऊं, ये संभव नहीं है, और एक साथ भी पूर्ण होना हो तो भी वहां समय की जरूरत नहीं है, और वहां कर्म है, वो धीरे धीरे धीरे। वो हमारे जीवन में भी जो भी हम पाना चाहते हैं वो कर्म सापेक्ष और समय सापेक्ष है। और इसके मूल में तीसरी चीज है धैर्य। वहां धैर्य की भी तो जरूरत है। जो चीज आपको 15 दिन के बाद मिलने वाली है वहां बहुत धैर्य की जरूरत है। आपको वर्षों बाद मिलने वाली है, यहां तो चंद्रमा 15 दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन हमारे जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए, आत्मज्ञान को पाने के लिए, अपने को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, यहां तो वर्षों की साधना है, यहां बहुत बड़े धैर्य की जरूरत है। उन्होंने यहां पर पुरुषार्थ, कर्म समय सापेक्ष, पुरुषार्थ के द्वारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन के लक्ष्य को, और उन्होंने शिक्षा ली। हमारे जीवन की एक कक्षा है, जीवन की एक सफलता है। हम एक चीज तक पहुंच जाते हैं, एक स्तर तक पहुंच जाते हैं और वहां से फिर लौटना शुरू कर देते हैं। आपके पास जीवन है, ये शरीर है, ये शरीर एक युवावस्था की अंतिम सीमा तक पहुंचता है, एक ऊर्जा की अंतिम सीमा तक पहुंचता है। युवा होता है, वहां बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन वहां पर वो ठहरता नहीं है, वहां से फिर उतरना शुरू कर देता है। यही तो प्रकृति का सत्य है। यहां प्राकृत भौतिक जो सफलताएं हैं, जो उन्नतियां हैं, वो स्थिर नहीं है। हम दुनिया में कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, वहां बड़े होने के बाद वो बड़प्पन स्थिर नहीं, वहां से लौटना। कोई बहुत बड़ा आदमी बना, बहुत बड़ा आदमी बना भौतिक दृष्टि से, लेकिन उसका बड़प्पन स्थिर नहीं है, वहां से वो फिर लौटना शुरू कर देता है। और उसकी एक सीमा है, उसके बढ़ने की भी एक सीमा है। प्रत्येक व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो निश्चित है, और उस ऊंचाई तक पहुंचकर वो एकदम स्थिर हो जाता है, उसके आगे वो बढ़ता नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को 6 इंच किसी को बढ़ना है, 6 फुट बढ़ना है, तो 6 फुट बढ़ के रुक जाता है वो। किसी को 3 फुट बढ़ना है तो 3 फुट बढ़ के वो रुक जाता है। आपके पेड़ पौधे हैं, उसकी एक सीमा है, इसको इतना बढ़ना है, उसके बाद उसका बढ़ना रुक जाता है। आपके बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आप चने के पौधे को देखेंगे, उसको इतना बढ़ना है और उतना बढ़ने के बाद उसका बढ़ना रुक जाता है, उसकी एक सीमा है। प्रत्येक पदार्थ अपने अस्तित्व की चरम सीमा तक पहुंचता है और उसके बाद फिर वो लौटना शुरू कर देता है। ये परिवर्तन, ये जीवन का शाश्वत सत्य। लेकिन इस परिवर्तन को आदमी स्वीकार नहीं करता है, इस भौतिक परिवर्तन को आदमी स्वीकार नहीं करता है। भगवान ने कहा यही तो दुख है, अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितु अर्हसि। अपरिहार्य है परिवर्तन, अपरिहार्य है वो परिवर्तन, होना ही होना है, उसको आप कैसे रोकोगे। लेकिन उस परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो दुख है वो परिवर्तन का नहीं है, ये दुख अस्वीकार का है। बुढ़ापा ये परिवर्तन है और ये अनिवार्य परिवर्तन है, होना ही होना है, इसको कौन रोक सकता है, अपरिहार्य। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। बूढ़ा होना है लेकिन हम बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत कुछ होना है जिसको हम नहीं चाहते हैं और वो अनिवार्य है। आप जवान हैं तो बूढ़े होंगे, आप बहुत मजबूत शरीर वाले थे, लेकिन एक समय आएगा आपके घुटनों में दर्द होना शुरू होगा। आपको घुटने ज्यादा दुख नहीं देते हैं, लेकिन वो सोच, ये घुटने क्यों दर्द कर रहे हैं, वो सोच ज्यादा दुख देता है। इसी को तो शोक बोलते हैं। आदमी बीमारी से ज्यादा पीड़ित नहीं होता है, बीमार क्यों हुआ ये सोचकर वो पीड़ित होता है, बहुत ज्यादा पीड़ित होता है। ये शोक है, ये मानसिक कष्ट, और ये चीज हम सोच के पैदा करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो अनिवार्य सत्य है उसको तुम स्वीकार कर लो, जो परिवर्तन है उसको स्वीकार कर लो। और जो परिवर्तन स्वीकार करेंगे, जो अनिवार्य परिवर्तन, तो आपके अंदर अनावश्यक होने वाले जो दुख है, जो शोक है, वो दूर होगा। उन्होंने देखा कि चंद्रमा को एक अपनी पूर्णता तक पहुंचना है और पूर्णता तक पहुंचने के बाद पुनः धीरे धीरे शून्य की ओर प्रस्थान करना है, शून्य की ओर प्रस्थान नहीं खोना है, वहां चंद्रमा का खो जाना है, वहां अंधेरे में खो जाना है। आप अमावस्या के दिन ढूंढेंगे चंद्रमा को तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको कुछ भी उसकी उनकी खबर नहीं मिलेगी, संकेत तक नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर दूसरे दिन पुनः एक कला, फिर दूसरी कला। ये बहुत मजेदार उदाहरण है, ये चंद्रमा का उदाहरण बहुत मजेदार है। यहां तो परिवर्तन है, जो वस्तु पैदा होती है वो मरती है और जो वस्तु मरती है वो पुनः पैदा होती है। यहां विकास और ह्रास ये दोनों चीजें चलती रहती हैं, ये प्रकृति में ये अनिवार्य रूप से चलती हैं और इसकी निरंतरता है। और जो दत्तात्रेय ने देखा कि ये परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य है, ये चंद्रमा की तरह, और ये हमारे जीवन में भी, हम कभी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और एक समय सीमा तक हम बढ़ते ही जाते हैं और हमारा बढ़ना रुक जाता है और उसके बाद फिर हम मरना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, इस प्रकृति के अनिवार्य परिवर्तन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इस परिवर्तन को जो स्वीकार करता है वो व्यक्ति सुखी हो जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के शोक से मुक्त हो जाता है। चंद्रमा से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने सूर्य को देखा और वो सोचने लगे, सूर्य के अंदर एक शक्ति है और वो शक्ति है, सूर्य ऊपर खींचता है जल को, जल पृथ्वी पर है, जल कीचड़ में है, बहुत गंदी जगह में है, अच्छी जगह में है, लेकिन सूर्य उसको खींचता है, उसको बाष्प बना लेता है, उसके अंदर की जड़ता को समाप्त कर देता है और वो जल बाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है और वो पुनः बाष्प बनकर वो जल बन जाता है और वो पुनः पृथ्वी पर बरसता है। उन्होंने देखा कि ये सूर्य ये उठाता है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा ली उन्होंने, हमें भी उठाना चाहिए, गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें दूसरे की मदद करना चाहिए। हम स्वयं उठना चाहते हैं लेकिन दूसरे को उठाना नहीं चाहते, लेकिन अग्नि उठाती है, उस जल को उठाती है और उसको भाप बना देती है और पुनः उसका जल बना के बरसा देती है। कितना बड़ा परोपकार है प्रकृति के, ये सूर्य का कितना बड़ा परोपकार है हमारे ऊपर। जहां जल नहीं वहां तक जल पहुंच जाता है, पहाड़ों पर जल पहुंच जाता है, नदी नालों में जल पहुंच जाता है, ये सूर्य की महिमा है, ये बहुत बड़ी सूर्य की महिमा है। उन्होंने देखा और सोचने लगे, हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए, गंदे जगह के जल को भी वो उठा लेते हैं, उसको सुखा देते हैं और उसको बिल्कुल स्वच्छ जल में बदल देता है सूर्य। ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए, हमें किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, उस जल को मीठा बना देता है। समुद्र का जल खारा है, आप पी नहीं सकते, आप समुद्र के किनारे हैं और यदि बाहर का जल आपको न मिले, मीठा जल न मिले, तो आप समुद्र का जल नहीं पी सकते। मैं एक दिन सोच रहा था, जितने भी पानी के फल हैं वो समुद्र के किनारे, जितने भी पानी के फल हैं वो गर्मी के दिनों में, जितने भी पानी के फल हैं वो रेगिस्तान में बालू में पैदा होते हैं। सारे नारियल समुद्र के किनारे क्यों हैं? क्योंकि आपको पानी पीना है और आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते। आपको पानी की बहुत जरूरत है, तो आप क्या करोगे? इसलिए भगवान ने नारियल बना दिए। आप समुद्र के किनारे आप नारियल पी लेंगे, आपको पानी मिलेगा। गर्मी के दिनों में उन्होंने तरबूज बना दिए जिसमें पानी है। ठंडी के दिनों में नहीं आते तरबूज, गर्मी के दिनों। सूर्य की कितनी बड़ी कृपा, जो खारा जल है उसको मीठा बना देते हैं। परम पूज्य महाराज श्री ने बादलों के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था, उस समय मथुरा में बादल थे, बहुत सारे बादल, और वो बादल बिल्कुल सटकर चल रहे थे जमीन से, धीरे धीरे मंद मंद गरज रहे थे, मंद मंद गरज रहे थे, और वो बहुत प्रसन्न थे कि आज भगवान के दर्शन होंगे, हमें भगवान के दर्शन होंगे। बोले, आज इतने बादल क्यों प्रसन्न है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बादलों ने सोचा कि हम समुद्र के आसपास हैं और हमने सुना है भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, सागर में रहते हैं, चले भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और बादलों ने जाके समुद्र से प्रार्थना की कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, हमने सुना है तुम्हारे पास भगवान रहते हैं, सागर की बेटी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी नारायण की पत्नी, भगवान की पत्नी है, और उस रिश्तों में ये क्षीर सागर भगवान का ससुराल है, और भगवान ससुराल में रहते हैं, आपके पास रहते हैं, हमें दर्शन करा दो। समुद्र ने कहा कि ऐसे दर्शन नहीं होते भगवान के, उसके लिए दृष्टि की पवित्रता की बहुत जरूरत है, मन की पवित्रता की बहुत जरूरत है, चरित्र की पवित्रता की बहुत जरूरत है। तुम जाओ, पहले अपने आप को पवित्र बना लो, चरित्रवान बना लो, और उसके बाद तुम जब आओगे तो तुम भगवान के दर्शन कर सकोगे। बादलों ने कहा, कोई उपाय बताओ हम अपने मन को पवित्र बना सके, हम अपने आचरण को पवित्र बना सके। सागर ने उपाय बता दिया और उन्होंने कहा कि परोपकार करो, और यही परोपकार है कि समुद्र का खारा जल ले जाके उसको मीठा बनाकर प्रजा के ऊपर बरसाओ, ये बहुत बड़ा परोपकार होगा, और इस परोपकार के पुण्य से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, जीवन पवित्र होगा, निष्काम कर्म से तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, और उस समय भगवान के दर्शन होंगे। वर्षों तक बादल उस खारे जल को लेकर मीठा बनाकर प्रजा के ऊपर बरसाते रहे, और आज सुयोग प्राप्त हुआ। आज बादल बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न, भगवान के हमें दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। बहुत मजेदार दृष्टांत है ये, बहुत बड़ी बात है, ये परोपकार की बात है, ये जीवन को पवित्र बनाने की बात है। खारा जल मीठा बना के बादल बरसाते हैं, लेकिन उसके मूल में सूर्य है, ये सूर्य के बिना संभव नहीं, ये काम तो सूर्य का है, उसको भाप बनाना और भाप बनाकर पुनः जल में बदल देना, मीठे जल में। और जो दत्तात्रेय ने देखा कि बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी परोपकार की बात है, खारे को मीठा बना दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपके सामने कोई व्यक्ति आए और उसमें बहुत सारी कमियां हो, लेकिन उसको सुधार दे, एक अज्ञानी को ज्ञानी बना दे, एक क्रोधी को दयालु बना दे। यही तो काम है साधु का, यही तो काम है। एक आधार्मिक व्यक्ति है और उसको धार्मिक बना दे। जो समाज का विनाशक व्यक्ति है उसको समाज के सुधारना में लगा दे। और जो दत्तात्रेय ने शिक्षा ली सूर्य से और उन्हें अपने जीवन को बनाना शुरू कर दिया नारायण, कपूत को उन्होंने देखा, कबूतर को देखा, वो दूर खड़े थे, उन्होंने देखा एक शिकारी आया है और उस शिकारी ने जाल बिछा दिए और उस जाल में उस कबूतर के बच्चे आ गए, फंस गए। उसके बाद उन्होंने देखा उड़ते हुए कबूतर आ गए, उनके माता पिता आ गए और वो इतने विह्वल हो गए और विह्वल होकर पुनः जानते हुए भी, उस जाल को जानते हुए भी, उस खतरे को जानते हुए भी वो जाल में गए और अटक गए। उन्होंने देखा ये अति आसक्ति, ये अति आसक्ति आदमी को अटका देती है। आदमी को अति आसक्त नहीं होना चाहिए, आसक्ति उतनी बुरी नहीं है, अति आसक्ति बहुत बुरी है, अति आसक्ति बहुत बुरी है। और ये आसक्ति हर जगह पर, हम भोजन करने के लिए बैठते हैं और उस समय जो भोजन के पदार्थ जब अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते, जैसे अच्छे लगते जाते हैं वैसे हम उसमें अटकते जाते हैं, ये खाओ वो खाओ वो खाओ वो खाओ, और उसके बाद अति आसक्ति में आदमी अपनी लिमिट को पार कर देता है। ये दुनिया की हर चीज है, हम जहां पर भी अति आसक्त हो जाते हैं वह दुनिया की सारी हदें पार कर देते हैं। ये काम का अतिक्रमण, ये बलात्कार में व्यक्ति को ले जाता है। आपको क्रोध आए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस क्रोध का अतिक्रमण माने क्रोध की अति हमें हिंसा में ले जाती है, लोभ की अति हमें भ्रष्टाचार में ले जाती है, चोरी में ले जाती है। लोभ होना उतना बुरा नहीं है, लेकिन अति लोभ हमें छीनने में ले जाता है, हमें भ्रष्टाचार में ले जाता है। इसलिए संसारिक ये आकर्षण व्यक्ति को फंसा देते हैं। देखा ये प्रलोभन संसार का बहुत बड़ा प्रलोभन है, वहां चारा डला हुआ है और वहां जाल भी बिछा हुआ है और मालूम भी है ये चारा है और ये जाल है और इसमें हम फंसेंगे, हम अटकेंगे, उसके बाद भी पक्षी फंस जाते हैं। कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री विद्यानंद गिरिजी महाराज एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया करते थे, आपने भी सुना होगा, दृष्टांत बहुत मजेदार है। एक कोई व्यक्ति था, उसने कबूतर पाल रखा था, उन्होंने बहुत सारे पक्षी पाल रखे थे, तोता पाल रखा था और वो छोड़ देता था और वो दाना चुग करके पुनः वापस आ जाया करते थे, लेकिन एक खतरा था, जब वो बाहर जाते थे तो उसको कोई शिकारी पकड़ लेता था, कोई आदमी पकड़ लेता था दाना डालकर। आज वो पालतू होते हैं उसको पकड़ना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आदमी के आसपास के होते हैं, थोड़ा सा दाना डालो तो आ जाते हैं। उस आदमी ने सोचा कि मैं पक्षियों को ऐसी शिक्षा दूं जो प्रलोभन में न फंसे, जो जाल में न आए, जो पकड़े न जाए। उन्होंने शिक्षण देना शुरू कर दिया, एक मंत्र बना लिया, शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन दाने के मोह में फंसना नहीं। बहुत सुंदर मंत्र हैं, उन्होंने मंत्र उन्हें सिखा दिया, तोतों ने रट लिया, कबूतरों ने रट लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन दाने के मोह में फंसना नहीं। बहुत कम समय में उन तोतों ने, पक्षियों ने वो मंत्र सीख लिया और वो बहुत अच्छी तरह से बोलने भी लगे, तो आदमी बहुत प्रसन्न हुआ और वो समझ गया कि अब कोई खतरे की बात नहीं है। आप कोई कितना भी दाना डालेगा लेकिन ये फंसेंगे नहीं, और उन्होंने उनको उन्मुक्त कर दिया। बोले जाओ घूमो फिरो खाओ और पुनः वापस आ जाओ, कुछ दिन तो बहुत अच्छी बात रही। लेकिन एक दिन सचमुच वो शिकारी आ गया, पक्षियों ने देखा शिकारी आ गया और वो मंत्र उनका शुरू हो गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन दाने के मोह में फंसना नहीं, सावधान। सारे पक्षी मंत्र बोलने लगे और सचमुच शिकारी ने जाल बिछा दिया, दाना भी डाल दिया और वो छुपकर बैठ गया। अब वो पक्षी आपस में देखने लगे, ओहो बहुत अच्छा दाना है, दाने का प्रलोभन इतना था और वो गाना तो गा ही रहे थे, वो मंत्र जप कर ही रहे थे, लेकिन दाने का इतना प्रलोभन था वो भूल गए, वो जाले को भूल गए, लेकिन वो मंत्र तो जप ही रहे थे और जाले के ऊपर बैठ गए वो। और जब जाले के ऊपर बैठ गए उस समय भी वो गाना गा रहे थे, वो फंस गए दाने के प्रलोभन में, वो जाल में फंस गए, और उसके बाद भी वो मंत्र जप कर रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन दाने के मोह में फंसना नहीं है। फंस गए, फंस गए, शिकारी ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद भी वो गाना गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन दाने के मोह में फंसना नहीं। ये उन कबूतरों की बात नहीं है, ये तोतों की बात नहीं, ये हमारी बात है। इन संसार के प्रलोभन है और इन संसार के प्रलोभनों में हम अटकते हैं, हम भटकते हैं। बहुत सारी चीजें हमें अटका देती हैं और हम हमेशा प्रतिज्ञा करते हैं, नहीं नहीं ये हम काम नहीं करेंगे। और जैसे वो सामने चीज आ जाती और उसके बाद वो सारी हमारी प्रतिज्ञाएं, वो हमारे सारे मंत्र, वो सारी दीक्षा वहां समाप्त हो जाती है और हम अटक जाते हैं। और नहीं अटकने की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं हम, हजारों बार अपने अंदर संकल्प व्यक्त करते हैं अब हम ये नहीं करेंगे। आदमी कसमें खाता है, भगवान की कसमें खाता है, ये आज के बाद ये काम हम नहीं करेंगे। अपने आप को पीटता है, वो खींचता है, कान भी खींचता है, लेकिन दाने के मोह में फंस जाता है, ये संसार के आकर्षण में फंस जाता है। और जो दत्तात्रेय ने देखा ये बहुत बड़ा आकर्षण और इस आकर्षण से बचना चाहिए, इस आकर्षण से बचना चाहिए। एक बार की बात है, एक कोई राजा थे और राजा ने एक अपने दरबार में बिल्ली पाल के रखी थी और वो बिल्ली भी बड़ी मजेदार। रात्रि के समय राजा जब भी कोई काम करते थे अपना, दिया जलाते थे और उस दिए को उस बिल्ली के सिर पर रखते थे और उसके बाद फिर लिखा पढ़ी का काम करते थे। बहुत अनुशासित थी बिल्ली, वो बहुत स्थिर भाव से बैठी रहती थी, राजा सारे काम करते थे। एक दिन राजा नाराज हो गए अपने मंत्रियों के ऊपर और उन्होंने कहा कि तुमसे अच्छी तो मेरी बिल्ली है, बहुत अनुशासित है, इतनी आज्ञाकारी कि जैसे मैं दिया रखता हूं उसके सिर पर, वह आंख बंद कर बैठी रहती है। जब तक मैं दिया नहीं हटाता हूं तब तक वो हिलती नहीं। मंत्रियों को बहुत बुरा लगा, क्या हमसे अच्छी इनकी बिल्ली, हमारा कोई मूल्य नहीं। लेकिन उनमें एक प्रधानमंत्री था, वो बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, राजन आपकी इतनी अच्छी बिल्ली, तो हम आपकी बिल्ली को देखना चाहते हैं। जब आप अपने बिल्ली के सिर पर दीपक रखकर आप काम करते हैं, उस समय हम आपकी बिल्ली को देखना चाहते हैं। राजा ने कहा आज आओ संध्या के समय, मैं आपको दिखा देता हूं मेरी बिल्ली तुमसे कितनी ज्यादा आज्ञाकारी संयमी है। संध्या के समय सारे मंत्री लोग आए, उन्होंने देखा आश्चर्यचकित हो गए, सचमुच वो बिल्ली उसके सिर के ऊपर दिया रखा हुआ है और आंख बंद करके बैठी है, बिल्कुल स्थिर पत्थर की तरह। वो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि पत्थर की बिल्ली है कि ये जीवित बिल्ली है। उसी समय धीरे से चूहा निकाल लिया, प्रधानमंत्री ने एक चूहा पकड़कर अपने झोले में बंद करके रखा हुआ था और वो धीरे से उन्होंने चूहा छोड़ दिया और जैसे वो चूहे की गंध उस बिल्ली के नाक तक पहुंची, एकदम झलझला गई। और जैसे उन्होंने चूहे को देखा, अपने सिर पर रखा हुआ दिया उतार दिया, फेंक दिया और दौड़ पड़ी उस चूहे के पीछे। बिल्ली का सारा अनुशासन भंग हो गया। बिल्ली का अनुशासन तभी तक है जब तक सामने चूहा नहीं आता है। यह हमारी कहानी है, हमारी सारी मर्यादाएं, हमारा सारा अनुशासन तभी तक है जब तक हमारे सामने विषय नहीं आते। हम दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन बेईमानी का समय आने तक, अवसर मिलने तक, जैसे ही बेईमानी का अवसर मिल जाता है हमारी सारी ईमानदारी भूल जाती है। आदमी को बेईमान बनाने के लिए बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, एक रुपए के लिए भी आदमी बेईमान हो सकता है, एक करोड़ रुपए के लिए भी आदमी बेईमान हो सकता है। बनारस की बात है, हम गंगा के किनारे जाके बैठ जाते थे, बहुत सुंदर है गंगा का किनारा बनारस का, बहुत सुंदर, बड़े बड़े घाट हैं। एक दिन हमने देखा छोटे छोटे बच्चे वहां कुछ खेल कर रहे थे, उनका खेल भी बहुत मजेदार था। उन्होंने 5 रुपए के नोट को, वो पुराने जमाने का 5 रुपए का नोट, उस नोट को उन्होंने धागा बांध रखा था और वो 5 रुपए का नोट उन्होंने रास्ते में डाल दिया था और उस धागे का दूसरा छोर उनके हाथों में था। वहां से कोई आदमी गुजरता और जैसे ही उस 5 रुपए के नोट को उठाने लगता था तो बच्चे उसको खींच लिया करते, खींच लेते थे। हमने देखा, हमने कहा ये क्या कर रहे हो? ओ बोले स्वामी जी चुप रहो, स्वामी जी चुप रहो, चुप रहो। हम चुप हो गए। उधर से एक व्यक्ति आ रहे थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे मालूम पड़े, पैसे वाले भी मालूम पड़ रहे थे, बहुत लंबे चौड़े थे, उस एरिया के थे। जैसे आए और उनके जैसे 5 रुपए के नोट पर दृष्टि पड़ी, धागा तो बहुत छोटा था वो रील का, वो मालूम नहीं पड़ा, वो खड़े हो गए और वो देखने लगे कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। आदमी बेईमान होना चाहता है लेकिन ये निश्चित कर लेना चाहता है कि मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है, और जब वो निश्चित हो जाता है कि मेरे को अभी कोई देख नहीं रहा है तो आराम से वो गलत होने को तैयार हो जाता है। हम इसलिए गलत नहीं है, आज तक हम बहुत सारी चीजों में हम आज तक गलत नहीं है, वो इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कि गलत होने का अवसर हमें नहीं मिला है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ऊपर नजर रखती हैं और इसीलिए हम अच्छे बने हुए हैं, इसलिए नजर रखने वाले बहुत जरूरी हैं। अब यहां प्रेमपुरी आश्रम में कैमरे लगे हुए हैं, आपको कमरे से बाहर निकलते ही सावधान रहना पड़ता है। ओ क्या मेरा है भैया, आप साधु हैं, कई बार साधु महात्मा कौपीन पर विचरण करते हैं। अजय बहुत सारे साधु रात के समय कौपीन पर घूमते रहते हो। ओ लेकिन आप घूमना मुश्किल है गिरीश भाई, कैमरे लगे हुए हैं आपको देख रहा है कोई, आपको देख रहा है ये आपको मालूम हो जाए तो आप गलत होने से बचोगे, ये बात अच्छी भी है। और हम इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमको कोई देख रहा है, आपको ईश्वर देख रहा है, आपको कोई आदमी देख रहा है, आपको सरकार देख रही है, तो आप बहुत सारे गलत कामों से आप बचोगे, ये अच्छी भी बात है। आदमी निश्चित कर लेना चाहता है कि मेरे को कोई देख न ले तो मैं जो बुरा से बुरा काम है वो कर लूं, मैं वो निश्चित होना चाहता है। इसलिए अक्सर जो आदमी बड़ा बन जाता है तो वो बुरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको निश्चित करने की सुविधा मिल जाती है, कोई मेरे को न देखे इसकी सुविधा मिल जाती है बड़ा होने के बाद। उस आदमी ने निश्चित किया कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है, धीरे से उन्होंने नीचे हाथ किया और उस नोट को छूने लगे, उसी समय उस नोट को बच्चों ने खींच लिया। और वो ऐसा नहीं खींचा, वो धीरे धीरे खींच रहे थे उनको लगा कि नोट उड़ रही है, ये हवा से उड़ रही है। और जब आदमी अति आसक्ति में होता है तो उस समय अपना विवेक खो देता है, उस समय आसक्ति थी, उस समय उसके अंदर लोभ पैदा हो गया था। आदमी जब चोरी करता है तो उसका विवेक खो जाता है, बौद्धिक क्षमता अवरुद्ध हो जाती है और उनको मालूम नहीं पड़ रहा था ये नोट खींचा जा रहा है, उनको लगा कि ये हवा से उड़ रहा है, वो नोट आगे आगे और वो व्यक्ति पीछे पीछे, और वो बच्चे ताली बजा बजा के हंस रहे थे। थोड़े समय के बाद उन्हें होश आया, उनको मालूम पड़ा कि मैं बेवकूफ बन गया, और बच्चों ने फिर वो पूरी की पूरी नोट खींच ली, वो नोट पहुंच गई बच्चों के पास। आप समझ गए, जब भी कभी रास्ते में आपको 1500 का नोट दिखाई दे तो पहले निश्चित करना कि वो कहीं धागे से बंधा तो नहीं है, और नहीं तो आप फंस जाओगे। आप बहुत बड़े हैं, आपको बेईमान बनाने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, आपको एक रुपया भी बेईमान बना सकता है। और तुलनात्मक देखोगे तो वो बहुत अलग नहीं है, आप करोड़ रुपए के बेईमान हैं और आप एक रुपए के बेईमान हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बेईमान तो बेईमान, उसकी जो क्वालिटी है उसका जो स्तर है वो बिल्कुल बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ रुपए खाया तो बहुत बड़ा बेईमान और कोई एक रुपया खाया तो बेईमान, ऐसा नहीं है, वो बराबर है। उसके अंदर वो चीज है जो एक रुपए का बेईमान आदमी करोड़ रुपए का बेईमान बन सकता है। ये आकर्षण है, ये संसार का आकर्षण है। हम बहुत बड़ी बड़ी कसमें खाते हैं, बहुत बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन तब तक जब तक हमें वो अवसर नहीं मिलता है। हम बहुत बड़े बड़े निष्कामता की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, लेकिन तभी तक जब तक वो विषय सामने नहीं आता है। कई बार आदमी उपवास का संकल्प लेता है और जैसे भोजन सामने आ जाता है तो सोचता आज तो खा लेता हूं, आदमी सोचता है चलो आज तो खा लेता हूं। परम पूज्य महाराज श्री के साथ एक कोई महात्मा थे, उनके पेट में अल्सर था, डॉक्टर ने कहा कि तुम तीखा खाना छोड़ दो। उनको मिर्ची बहुत पसंद थी, बहुत तीखी मिर्ची पसंद थी, बहुत मिर्ची खाया करते थे। डॉक्टर ने मना किया, उन्होंने मान लिया, उसके बाद भी उनका अल्सर ठीक नहीं हो रहा था। दोबारा डॉक्टर को बुला लिया गया, डॉक्टर ने कहा कि आप मिर्ची खाते हैं? बोले नहीं। उनके पास में एक महात्मा खड़ा था, उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये खाता है मिर्ची और ये पहले से भी ज्यादा खाता है। उन्होंने कहा मिर्ची कहां खाता हूं? अरे बोले वो तो प्रसाद खाता हूं। जब डॉक्टर ने मना किया तो उन्होंने भगवान को भी मिर्ची का भोग लगाना शुरू कर दिया। अब वो ठाकुर जी को मिर्ची का भोग लगाया करते थे और वो भोग लगा करके मन को शांति होती थी। मिर्ची कहां, ये तो प्रसाद है, ये मिर्ची कहां, ये तो प्रसाद है। आकर्षण इतना है कि उसको प्रसाद बना के खा रहे थे, प्रसाद बना के खा रहे थे। ये आदमी भी ऐसे ही खाते हैं, प्रसाद बना के खाते हैं। आदमी अनेकों तरीकों से खाता है और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करता है, लेकिन वो सारी प्रतिज्ञाएं ध्वस्त हो जाती हैं। ये संसार का आकर्षण है, ये अति आसक्ति है। अवध दत्तात्रेय ने देखा ये अति आसक्ति व्यक्ति को मिटा देती है, अति आसक्ति व्यक्ति को ऊपर से नीचे गिरा देती है। इसलिए अति आसक्ति के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। शनै शनै रूपरमित बुद्ध्या धृत्या ग्रहितया। और हमारे अंदर सहनशील होने की क्षमता को निर्मित करना चाहिए। ये सहनशीलता है और कुछ नहीं है। ये विषय सामने आने के बाद आदमी का मन विवल हो जाता है, आदमी असहनशील हो जाता है। और जितना सहनशील होता है उतना उसको पचा देता है। उस आकर्षण को पचाने के लिए आदमी को सहनशील होना बहुत जरूरी है। ये सहनशीलता है। आपने किसी चीज को देखा और आपके अंदर विफलता पैदा हो गई, एक विफलता एक पीड़ा है, उसको पाने की इच्छा पैदा होना एक अंदर की वेदना है। और उस वेदना को सहन करने की क्षमता आपके अंदर जितनी होगी उतना आप उससे बचोगे। और सहनशीलता यदि नहीं है तो आप नहीं बच पाओगे, वो आकर्षण खींच लेगा, वो आकर्षण खींच लेगा। एक हाथ बोलता आगे बढ़ाओ, दूसरा हाथ बोलता रुको। अक्सर होता है कि नहीं, आप बीमार हैं, आपके थाली में मीठा आ गया है, आपको शुगर है, एक मन बोलता खाओ, एक इंजेक्शन ज्यादा लगा लेंगे। मन बोलता है बीमार पड़ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन खाने से कैसे रहोगे। इंदौर में एक के घर में मैं गया, उन्होंने बहुत सारी तेल की चीजें बनाई। उन्होंने कहा कि महाराज खाओ, मैंने कहा मैं तेल नहीं खाता हूं। उन्होंने कहा खा लो, आज के दिन खा लो। मैंने कहा बीमार पड़ जाऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर के पास ले चलूंगा, लेकिन खा लो। आप डॉक्टर के पास जाने को तैयार हैं लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। ये विषय की विफलता है। आपके सामने वो चीज हो और आप विफल हो गए उसको खाने के लिए, और उस विफलता को पचा लो, उसको सहन करो। ये सहन करने की आदत आदमी के बहुत सारे उपद्रवों से बचाती है। इसलिए हमारे वेदांत में सहनशीलता को बहुत बड़ी चीज बोला है, सहनशीलता को बहुत बड़ी चीज बोला है। परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज जी को किसी ने पूछा, महाराज सिद्धि का अर्थ क्या है, साधु के लिए सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि सहनशीलता ही सबसे बड़ी सिद्धि है। सहनशीलता ये बहुत बड़ी सिद्धि है। सहन करो, आपके अंदर वासना पैदा हो जाए उसको सहन करो। भगवान ने भी गीता जी में बोला है, ज्ञानी में भी काम क्रोध लोभ पैदा होते हैं, लेकिन ज्ञानी उसको सहन कर लेता। सहते काम पैदा हुआ ज्ञानी उसको सहन कर लेता है, क्रोध पैदा हुआ ज्ञानी उसको सहन कर लेता है, लोभ पैदा हुआ उसको ज्ञानी सहन कर लेता है। परम पूज्य विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज एक बात बहुत सुंदर किया करते थे, ज्ञानी के जीवन में काम क्रोध लोभ जल के ऊपर खींची हुई लकीर की तरह होते हैं। जल के ऊपर लकीर आप खींच दो, आपको मालूम नहीं पड़ेगा यहां पर मैंने लकीर खींची थी। आप एक तरफ से खींचते जाओ, दूसरे तरफ से वो मिटना शुरू हो जाते, मिटती जाती। और अज्ञानी के जीवन में काम क्रोध लोभ पत्थर की लकीर होती है। आपने पत्थर के ऊपर लकीर खींची, अब वो मिटेगी नहीं, वो मालूम पड़ेगी। इसलिए हमारे अंदर जल की तरह भाव जो भी पैदा हो, जल की तरह एक तरफ से पैदा हो दूसरे तरफ से मिट जाए, पैदा ही ना हो, और कदाचित पैदा हुए तो एक तरफ से पैदा हुआ और दूसरे तरफ से मिटना शुरू हो जाए। ये सहनशीलता अंदर से विकसित करना बहुत जरूरी है। और उसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको सुना दूं, कभी आपने ध्यान दिया होगा, आप भोजन करने के लिए बैठते हैं और आप मंत्र बोलते हैं, ओम सहना वतु सहनो भुनक्तु, मंत्र बोल के आप खाते हैं। ये बहुत बड़ा धैर्य है, ये सहनशीलता पैदा होती है उसमें। आप भूखे हैं, आपके सामने भोजन है और उसके बाद भी आप खा नहीं रहे हैं, यही तो सहनशीलता है। आप बच्चों में इसको डेवलप करते हैं, आप विकसित करते हैं सहनशीलता। ऐसा नहीं कि चटनी आई और चटनी चाटते जाए। आपके थाली में चटनी आई है तो आप रुको, थोड़ा दाल आने दो, रोटी आने दो, सब्जी आने दो, सारी चीजें आ गई और उसके बाद भोजन करो। लेकिन आज भी बड़ा मजेदार, नमक आए तो नमक ही चाटना शुरू कर देता है। नमक कोई चाटने की चीज नहीं, सहनशीलता नहीं है। इसलिए आदमी को धैर्य विकसित करना चाहिए, सहनशीलता विकसित करनी चाहिए। और ये सहनशीलता बहुत सारी आसक्तियां आती, आसक्तियां और इन आसक्तियों के जो उपद्रव हैं उसको बचा लेती हैं। ये अवधूत दत्तात्रेय ने शिक्षा ग्रहण की बहुत सुंदर कपोत से, और उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, बड़ा आनंद आया प्रेमपुरी सत्संग भवन में आना और यहां पर आप लोगों के बीच में सेवा का अवसर मिलना, अपने आप में ये आनंदपूर्ण है, सेवा का अवसर है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, प्रेमपुरी जी महाराज जी को, परम पूज्य खंडाली जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, पांच बार आप मंत्र का जप करेंगे। ओम ह्रीम नमः शिवाय,
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 ओम ह्रीम नमः शिवाय।
ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में आप सबकी ओर से वंदन करते हुए, महाराज जी यह प्रेमपुरी आश्रम है और यहां अगर यही जाल की बात करनी हो तो कैसे करें, बैठे बैठे सोच रहा था। संत आएंगे, सत्संग से ध्यान हमें लगवाएंगे और हमें मोह में फंसना है, और फंसना तो है और भी लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा लोग फंसे, क्योंकि यह ज्ञान की जाल है, यह मोह से मुक्त करने की जाल है। यह जो बिल्ली पे जो दिए की बात महाराज जी ने की, ये यहां आत्मदीप की बात है, कोई ना उसको हटा सकता है ना कोई चूहा ले जा सकता है। हम हमारे में जो हमारी कमियां हैं वो दूर कर हम आत्मदीप हमारे अंदर जलाते हैं। तो यह सब बातें संतों से जो हम सुनते हैं तो लगता है कि संत आते रहे, इसी तरह जाल बिछाते रहे और हमें यह मोह से दूर कराते रहे। तो ऐसी सुंदर बातें मुझे महाराज जी ने अवधूत गीता के माध्यम से, क्योंकि प्रकृति ने ही हमारी कृति बनाई हुई है और जो प्रकृति में जो है वो प्रसाद रूप है। प्रकृति की कोई भी चीज हम ले लें वो हमें नुकसानकारक नहीं है, जब भी उसमें हमारे जो मिलावट होती है वही हमें कोई न कोई तकलीफ देती है, बाद में हमें भागना पड़ता है इधर उधर। जैसे महाराज जी ने बताया कि भाई वो तेल का खा लो फिर डॉक्टर है, गुनाह कर लो वकील है। तो यह सब बातें जो है वो इसके लिए है कि हमारे में दुर्गुण है। और प्रेमपुरी आश्रम में जब भी संत आते हैं तो यही दुर्गुणों से हमारी मुक्ति होती है। आपका यह अवधूत गीता के रूप में जो बहुत ही सुंदर प्रवचन हमें प्राप्त हुआ उसमें ईश्वर की हम कृपा मानते हैं। महाराज जी अगले वर्ष भी हमारे बीच में इसी समय रहेंगे। आप सबकी ओर से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।